ओम शांति। तो आज का टॉपिक है, ऐसे तो दूसरे का टर्न था, कल की तैयारी के लिए हमें तो टॉपिक का ऐसे ओकली में शेर दिया है, तो मुस्लिम से डरना क्या। आज डबल अनुभव हो रहा है, एक तो दूसरा ही पहले ही होमवर्क था तो
प्रैक्टिकल
तो इसका ये मुहावरा कहो या कहावत कहो, संगम के हम सभी के पुरुषार्थ का ही यादगार है सब चुटकुले, कथा, कहानी, कहावतें जो भी है बने हुए हैं, सब हमारे इस संगम के पुरुषार्थ का ही परिणाम कहो, उसके यादगार कहो, उस रूप में कहते हैं, सुनते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। तो इसका इस कहावत का तात्पर्य ये है कि जो जिसने लक्ष्य लिया जाता है किसी भी काम के लिए, या जो भी हमको जिम्मेवारी मिलती है या लेते हैं हम लोग संगम पर, जितना जिसका समझ है उस अनुसार यथाशक्ति हर एक अपना लक्ष्य लेते हैं पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का, तो उसको उसमें कितनी भी परिस्थितियां आए, बाधाएं, समस्याएं आती है, आना भी चाहिए, उसमें निर्भीक होके उसकी परवाह न करते आगे बढ़ते रहना, उसको भरसक प्रयास करने का और उसको लक्ष्य को पूरी प्राप्ति के लिए उसमें अड़िग रह के निर्भीक होके सतत प्रयास करते रहना, ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि लास्ट में होती है। लेकिन इसके बीच में बहुत सारी बातों का, जैसे ओखली का मतलब है, ओखली देखा होगा सबने, ओखली और मुसल देखा है सबने, ये गांव में ज्यादा, अभी तो सारा मशीनों ने ले लिया सब ये काम, इन सब का बहुत गांव में उपयोग होता था पहले। ओखली उन्होंने कहाँ देखा, नहीं देखा होगा। तो उसको ओखली उसी को कहा जाता है, कहा उसी को जाता है जिसमें कुछ वार हो, अर्थात उसमें मुसलों का वार न हो, ऐसा हो, उसी के लिए बनाया होता है वो, अर्थात उसका उसमें वो कूटने के लिए बोलते हो, तो उसमें अगर और देखा जाए बिना वार के किए उस मुसल का कहो या ओखली का भी क्या तात्पर्य, उसकी भी सार्थकता नहीं होती है, दोनों उसी काम के लिए, वो मुसल मारने के लिए और ओखली मार खाने के लिए, जैसे कि और उससे क्या है वो चीज़, वो उससे पहले हमने देखा है गांव में तीन काम लिए जाते थे, हमने प्रैक्टिकल देखा है, एक तो जो धान होता है ना, धान को निखारने के लिए, चावल बनाने के लिए, और गेहूं को उस चमक लाने के लिए, और किसी चीज को महीन बनाने के लिए, ओखली से ये तीन काम हमने प्रैक्टिकल देखा है, और भी कई काम लेते होंगे, सख्त चीज को कड़ा कर, जैसे गुड़ का ढेला होता है उसको एक साथ तोड़ने के लिए भी उसको यूज करते हैं, ये भी देखा है। हाँ उसको भी करते हैं, और जब खीर बनाना है तो उसको रात पर भिगा के उस गेहूं को भी वो करते हैं, फिर रात में दूध में उसको पका के खाने से, बाबा बोलते हैं ना खीर कंडो के रहो, तो हाँ मिर्ची का, लाल मिर्ची का पाउडर भी उसमें कूटते हैं। तो ऐसे हम लोगों को पुरुषार्थ में भी देखा है, सेवा के क्षेत्र में जाते हैं तो कितनी सारी बातों का सामना करना पड़ता है, उसमें अगर हम डर गए या हार गए या थक गए, रुक गए, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसमें ये देखा गया है कि जब वो उसमें अगर कोई चीज डाली जाती है, ऐसे ही ओखली में मुसल नहीं कूटते खाली, कोई चीज डालने के बाद ही उसमें मुसल से मतलब कूटा जाता है, तो उसमें देखा है अगर वो कोई चीज मतलब कुछ डालते हैं, जैसे धान का बताया, धान को अगर जब ओखली में डालते हैं और उसको धान से कूटते हैं, जोर से नहीं कूटते हैं, उसका भी प्रोसेस होता है, धीरे धीरे कूटते हैं, फिर वो एक दिन ऐसे माताएं होती है, उसको ऐसे ऐसे करना पड़ता है, बीच बीच में डालना पड़ता है, इधर उधर फैलता है वो, तो कई सारे उसमें होता है, धीरे से कूटना पड़ता है, फटाफट करके पूरी ताकत के साथ ऐसा नहीं होता है, विघ्न समस्याएं भी एक साथ नहीं आती, एक परीक्षा पास होने के बाद दूसरी वही परीक्षा दूसरे रूप में आती है, तो पूरा अच्छी तरह उसका वो धान का ऊपर का कवर निकलने तक धीरे धीरे कूटते रहते हैं, फिर वो चावल बनकर बाहर आता है, तब वो कूटना बंद हो जाता है। गेहूं के लिए भी ऐसा ही है, उसका जो छोटा छिलका छिलका होता है ना उसके ऊपर दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके ऊपर जब कूटते हैं ना उससे वो चमक आ जाती है गेहूं के। हाँ, और जो हमारे उधर हमने देखा है मलीदा बनते हैं, जो बड़ा रोटला बनाते हैं और उसको उसका रोटला होता है उसको कूटते हैं, गुड़ डाल के उसमें मिक्स करके मलीदा बनाते हैं उसका। महाराष्ट्र में देखा है किसी त्योहार पर अक्सर करके मलीदा बना प्रसाद के रूप में, या ऐसे ही कोई त्योहार पर बनाते हैं, तो उसमें ये तीन चीजें मैंने देखा है। तो किसी ओकली में अगर कोई कहे चीज डालने के बाद वो चीज सोचे, और चीज अगर चैतन्य होता तो शायद सोचता कि मुझे मार लग रही है, थोड़ा कम मारो या नहीं मारो बच जाऊं मैं, अगर वो चीज कहे मैं बच जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। उखली में डाला है चीज तो वो मुस्लिम का वार तो होना ही है। तो इसी प्रकार हम लोग जो इस ग्रुप में आने का ही जो ऐसा संकल्प आया, ये क्या मुसीबत हमने झेल लिया है, लेकिन इसके बिना निखार भी नहीं आती जीवन में।
ये सब मुसल
है। नहीं है,
उखली है।
हाँ, उखली है। ये उखली है और हम जो यहाँ होमवर्क मिलता है वो है मुसल। इसके बिना निखार भी नहीं आएगा। फिर मैंने देखा हाँ मुसीबत तो लग रहा है, मैंने जान बुझ के हम मुसीबत में फंसना, इसका नाम है वो। हमको मालूम है यहाँ जाने से, हमने तो पहले सोचा था कि यहाँ तो अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, सुन के जाने का भजन का तो आदत थी ना कीर्तन करने का, तो यहाँ तो बोला कि हमको भीड़ नहीं चाहिए, भेड़ बकरी नहीं चाहिए, काम करने वाले चाहिए, तो बात तो सही है, लेकिन कुछ हमको भी करने का लक्ष्य तो है ही सबका, लेकिन जब अपने पर आती है ना तो वो मुसल का अनुभव होता है। तो अभी जैसे अचानक कहा फिर और ये डबल मुसल लगा हमको। नहीं तैयार नहीं था, वो ना आधा था, आधा तो तैयारी कर रहे थे। तो उसमें देखा मैंने, अभी अगर हम ऐसा सोचे कि हमारे ऊपर कोई विघ्न नहीं डाले, कोई समस्या ना बने, हमारा रास्ता क्लियर चलता रहे, जो लक्ष्य लिया है उसमें पूरा परिपक्व होकर आगे बढ़ते रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। हर एक ब्राह्मण जीवन में समस्याएं विघ्न परिस्थितियां तो आती है, आनी चाहिए, और सब लोग उसको यथाशक्ति पार करके आगे बढ़ ही रहे हैं। तो बात चल रही थी ओखली और मुसल की, तो उसमें जो चीज बताया गया है कि जो चीज डाला जाता है उसके बाद ही उसके ऊपर मुसल का वार होता है, तभी उसमें निखार आती है। जो चीज इसको महीन बनाना है, जैसे अभी इसमें अभी इतना दिन दो तीन दिन से वही संकल्प चल रहे हैं, तो हमारे पुरुषार्थ में महीनता आ गई, ये उस चीज की जैसे उखली से मनाया जाता है, और हमारे सोच में भी निखार आ जाती है। और व्यर्थ बातों से किसी ने कहा भी आज क्या बात है, बहुत गुमसुम लग रहे हो, बहुत टेंशन, मतलब गुमसुम क्या, आप उसको कैसे बोलो मैं ये वर्क मिला है हमको। तो अपने आप व्यर्थ से भी मुक्त हो गए, ये एक निखार आने का एक माध्यम हो गया होमवर्क मिलने से। फिर तीसरी बात तो वो सोचने के लिए पॉइंट तो ढूंढना पड़ता है ना, तो लगता है थोड़ा अलिप्त तो रहना पड़ेगा संगठन से, लेकिन उनको लगता है कि पहले जैसा मुस्कुराना रहा, ऐसे ही तो कुछ काम नहीं, लक्ष्य नहीं होता है, तो जनरल आदमी हाँ हो ही वो करता रहता है, उसमें एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। देखा हमने कुछ लक्ष्य लेके चलने से और जिम्मेवारी लेके काम करने से बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें फिर हमारी शक्ति बढ़ती है, जमा होती रहती है, लेकिन इसमें कतराते हैं हम। कल बाबा ने बोला ना, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए हृदय विदीर्ण हो जाता है किसी किसी का, इतना उसमें दुख शांति में झेलने पसंद करेंगे, लेकिन उसे मुक्त होके एक अलग से जीवन जीने का किसी को हिम्मत समझ तो है, लेकिन उस शक्ति नहीं आती है, मेहनत होती है इसमें। तो उसमें फिर आगे ये सोचा कि मैंने जैसे इस प्रकार मुसल का पड़ता, अगर हम अभी सोचे हम इस ब्राह्मण जीवन अपनाया है, हमको कोई बहन जी ने जबरदस्ती तो नहीं बोला कि भाई तुम कोर्स करो, आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान दिया 84 जन्म ने आत्मा शरीर जो भी हम बातें सुनते हैं 7 डेज कोर्स में, उसके बाद इस प्रकार से जीवन जीना है करके कोई बहन जी ने हमको जबरदस्ती दबाव तो नहीं डाला, हम स्वइच्छा से ही अपना मार्ग अपनाया। जैसे इस ग्रुप में भी हमको आने का, मतलब जैसे शुरुआत हुई तब तो शुरुआत में तो अच्छा लगा, जब होमवर्क मिलने लगा तो फिर लगा ये तो बड़ा मुश्किल काम लग रहा है, पीछे हटे। लेकिन नहीं, पीछे हटने से पीछे रह जाते, निखार नहीं आती, वो देखा मैंने। इस प्रकार अब ये हम इस जीवन को अपनाया है तो आगे कैसे बढ़े, उसके लिए क्या करें, तो कोई लक्ष्य लेना पड़ेगा, उसके अनुसार उसके अनुरूप काम करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा इस जीवन को हमने अपनाया, अभी इस दुनिया में देखो कितनी विकारों की आग जल रही है, उसमें अगर हमको बचना है या बचाना है, बाबा ने उस मुहिम को मुहिम में हमको लायक समझा और उस अभियान में हमको भी शामिल किया, तो उसको साथ देने के लिए, उसमें सहयोगी बनने के लिए अगर चल ही पड़े हैं तो फिर हमको मुसलमानों से क्या डरना है। कई सारी बातें हमको सुननी पड़ी, हमने भी शुरू शुरू में एक साल झूठ बोल के घर में, भाई शादी की उम्र में ही ज्ञान मिला हमको, तो ये पहली मुसल ये था। हाँ वो तो चलता रहता है आजकल तो। तो बोला कि भाई तुम अभी इतना उम्र हो गया है करो। मैंने बोला युक्ति से, रमेश भाई के भाभी उषा बहन पूना में आए थे, उन्होंने युक्ति बताई, अगर ऐसे कोई कुमार कुमारी को जबरदस्ती करें तो पोस्टपोन करें, युक्ति से आगे धकेल दे, हम अभी हमको नौकरी नहीं लगी है, अच्छा परमानेंट नौकरी लगने के बाद हम आगे करेंगे। अगर कोई दो चोटी वाली हमको मिल जाए, वो बोलेगी हमको एक चोटी का ही खर्चा करने का हम लायक नहीं है, दो चोटी। तो किसी ने कहा हमको, किसी रिलेटिव ने कहा, ये मैंने अपनाया प्रैक्टिकल, तो किसी रिलेटिव ने कहा एक काम कर, मैं उसका खर्चा पालूंगी, उसको तेरा भी भर पोषण करूंगी मैं, लेकिन मेरा कंगन तू पहन ले। तो ये मेरे को बात बहुत खराब लगी, ये तो क्या कह दिया उन्होंने, मना इसका ऑप्शन भी है, मैं चुप हो गया। फिर ये पहला मुसल का अनुभव, ये मना इस प्रकार से मैं प्रयोग किया। फिर तो दूसरा, धीरे धीरे मम्मी को पता पड़ा ये तो हमको झूठ बोल के चला रहा है, ये ऐसे बात बना रहा है, ऐसे ये शादी करते नहीं है इस संस्था में वो। उसके बाद फिर उसने विकराल रूप लिया थोड़ा, तो उसने क्या किया, थोड़ा पंचायत की मतलब बड़े लोगों को बुला के गांव में, ये खुद तो गया लेकिन अपने छह भाइयों को भी खराब कर रहा है, तो ये दूसरा मौसम। तो खैर उनका कर्तव्य था, वो अपने हिसाब से पूरी तरह से लगे थे, तो हमने उसमें भी युक्ति अपनाई कि भाई देखो हम किसको मना नहीं कर रहे, मैं अपना मेरा बड़ा भाई हूँ, मेरा फर्ज है, उसके अनुसार मैं उनको गाइडेंस कर रहा हूँ, ये अच्छा रास्ता है, हर एक की इच्छा है, करे ना करे मैं तो करूँगा। तो मम्मी ने बोला तू भले कहीं भी जा कुछ भी कर, लेकिन इनको खराब नहीं कर, ठीक है तुम रख लो अपने बच्चे अपने पास। मैं जहाँ वापस फिर आया, फिर वो भी कहा इस तरह से मैं मतलब पास करता गया विघ्नों को, तो आगे फिर अपने लाइफ में, लेकिन वो हमारे भाई हम मेरे से भी ज्यादा उत्सुकता से बाबा की ज्ञान बाबा को पहचाना, बाबा की ज्ञान में चल पड़े। तो दूसरी बात थी कि हमने देखा इस यज्ञ में शुरुआत में कई सारी बातें हैं, क्रांतिकारी लोगों ने जब गुलामी से सैकड़ों वर्षों की गुलामी से आजाद करने की जब बीड़ा उठाया, या गांधी जी ने स्वाधीनता का बिजुल बजाया, तब चाहे अंग्रेज चाहे हमारे देश के लोग अपने ही लोग का सामना कितना चुनौती करना पड़ा, फिर भी वो लोग हटे नहीं, डटे रहे, पीछे हटने का सोचा नहीं, उन्होंने कितना सारा बातों का सामना करके उसको फेस किया। तो इसी प्रकार अगर हम बाबा के ब्रह्मा बाबा के सामने, सबसे पहला तो उनका ही उदाहरण है, उनके सामने भगवान के मार्ग पर चलना शुरू किया बाबा ने, तो सबसे पहले सारा संसार एक तरफ हो गया और बाबा एक तरफ। इतना ही नहीं, समाज ही नहीं, अपना शरीर भी एक चुनौती बना, शरीर भी साथ देने का छोड़ दिया, मतलब शरीर भी चुनौती देने लगा, फिर भी बाबा एक संकल्प भी नहीं आने दिया। फिर उसके बाद हम दादियों को देखते हैं, रात से ठाट में पले हुए, घर में कभी उन्होंने ग्लास भी नहीं उठाया, और जब वो भगवान की मत पर चलने लगे तो क्या हुआ, उनके ही परिवार वाले उनके दुश्मन शैतान की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगे। कितनी बाधाएं मुश्किल सहन किया दादियों ने, कितना परेशानियों को झेला होगा, फिर भी उसमें पास होकर के उन्होंने वहां से निकल करके बाबा के आश्रय में आके आश्रम में रह के 14 साल तपस्या करके उस अपने को तपाया। फिर उसके बाद भारत में आके संस्थान के देख आने के बाद बाबा ने जब सेवा के क्षेत्र में भेजा हर एक को अलग अलग जगह पर, तो वहां भी क्या किया, हर धर्म वाले अपने हर हथकंडे अपनाने की कोशिश की सेवा के लिए, कहाँ इतना सहयोग देते रहे शुरू शुरू में, फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं अपना हिम्मत, अपनी निर्भीकता से, दृढ़ता की शक्ति से और निश्चय के बल से आगे बढ़ते रहे। हाँ, तो कई प्रकार की हम जीवन बाबा की जीवन कहानी में सुनते हैं, तो उन सब बातों को फेस करके वो लोग आगे बढ़े। आज वो मना दुनिया के सामने उनके चेहरा दिखाने लायक बने। ऐसी दूसरी बात है कि हमने देखा कि हम उसके अनुरूप हमारे सामने क्या समस्या है, क्या विघ्न है, कुछ भी नहीं है। हम अपनी स्वभाव संस्कार के कारण 63 जन्मों के कई सारी बातें हैं, तो वो विघ्न आते हैं तो लोगों के कमेंट्स सुनना ही पड़ेगा। उसके लिए हमको डरना नहीं, उसकी बातों को सोच के हम पीछे नहीं हटना। उसके कारण हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे नहीं, लोक लाज, कई प्रकार की बातें होती हैं, तो उसके कारण भी कई लोग पीछे हटते हैं और संगठन में रहते हैं। कुछ भी होता है, थोड़ी भी गलती होती है ना, अरे आप तो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप वाले हो ना, ऐसी गलती तो नहीं होनी चाहिए। बात तो सही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, वही लगे हैं पूरा संपूर्ण बनने के। आप भी तो, आपका भी तो यही लक्ष्य है ना? नहीं है, लेकिन हम तो, आप तो अच्छे हमारे से आगे हैं, तो आगे रहना चाहिए, कुछ गलती नहीं होना चाहिए। कितनी सुभावना है उनकी, मना हर तरह से हमको हर एंगल में बिल्कुल परफेक्ट देखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सहयोग देते हैं अभी, पहले तो विघ्न तो कोई नहीं डालते। तो दूसरी बात ये मैंने सोचा कि इस बारे में कि ओखली में सिर देना, तो आगे भी कई सारी बातें हैं, जैसे विश्व किशोर भाव की कहानी सुनते हैं, वो हमेशा स्टोव साथ में रखते थे, कहीं भी जाते थे किसी के हाथ का खाते नहीं थे, सेंटर की बहनों का भी नहीं। तो अपने कहीं भी भूख लगा, अपना मतलब धारणा भी पक्की की बात कर रहे हैं, कितनी सारी बातों का साथ में रखना कितनी अच्छी बात लगती है क्या? उन दिनों में, उस समाज में, उस सन में कितनी अच्छी जीवन था, उस समय सारा सस्ता मामला था, कोई इतना तमो प्रधान था कि शुरुआत कहो या हो ही गई, अभी तो बात ही नहीं कर सकते तमो प्रधान था कि अति है। तो उस समय उतनी धारणा पर उन्होंने ध्यान रखा, तब जाके उन्होंने कितनी सारी बातों को, दुनिया का, ब्राह्मणों का, कितनी सारी बातों का झेल पाए, तभी तो जाके वो इतना अच्छा पद को पाया। मन संगम पर भी बाबा ने उनको कितना आगे रखा, हर बात में सेवा के लिए, यज्ञ के निमित्त बनाया। तो जो जिम्मेवारी लेते हैं अच्छी तरह निभाते हैं, जिम्मेवारी लेना मना उखली में सिर डालना, तो उसको अच्छी तरह से निभाने से ही हमको उसमें प्रवीणता आ जाती है। उसमें उसको हमको डर के मारे हैं, डर लगता है कभी कभी, लेकिन डरना नहीं चाहिए। अभी धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है, तो अभी हमारा डर शायद नहीं, ठीक आगे फिर वो अभी भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हमारे पास तो अभी रावण का अंतिम चरण चल रहा है, तो इसमें वो मरता क्या न करता, हर प्रकार से यम केन प्रयोग करके हमको हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम भी कम नहीं, सत्य सर्वशक्तिवान सत्य की संतान है, तो हमारे पीछे भी बाबा होने के कारण हमारी तो निश्चित विजय है, विजयदाता हमारे साथ है। कब तक हराती रहेगी माया हमें, कब तक डराती रहेगी? आखिर योग लगाते लगाते कल बाबा ने बोला ना, एक दिन पवित्र हो ही जाएंगे, हमारे साथ घर चलेंगे। तो माया का तो ऐसा कोई साथ नहीं है, अभी तो उसका अंतिम चरण चल रहा है, तो डरने की बात नहीं है। लेकिन जो आदत नहीं होता है ना, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो कैसे भी एग्जाम पेपर आए डरते नहीं वो लोग। अभी हम लोगों को थोड़ा विचार सागर मंथन करने की आदत नहीं थी, बातें सब जानते हैं, बुद्धि में सब है, सब अस्त व्यस्त पड़ा है। तो उसको जैसे क्लास में कई बार यहाँ सुनते हैं, कितनी प्रकार की बातें सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें, उसको लगता है कि तुरंत उसको हम धारण कर ले और अच्छे एक पुरुषार्थी बने, हमारे लिए भी और सबके लिए काम आ जाए। लेकिन वो धीरे धीरे उसको अमल में लाने से वो सब बातें जीवन में आएगी और हम सब के काम आएंगे स्व सहित। और हम वो जैसे होते हैं ना, वो ओखली में वो उसका काम ही है मुसल से वार खा के, मना उसको वार होने के बाद ही वो चीज़ अच्छी बन के निकलती है। ऐसे हम इस प्रकार से जो भी हमको होमवर्क मिलता है या जो बाबा आज्ञा देते हैं, उस आज्ञाओं पर चलने से ही कितनी भी बाधाओं को सहना पड़े, कुछ बातों को सहन तो करना पड़ता है इस ज्ञान मार्ग में, शुरू से लेकर अंत तक सहन करना ही पड़ता है हर एक को, बिना सहन किए कुछ नहीं होता है। ये देखा है हमने, थोड़ा भी हमने सोचा मैं ही कितना सहन करूँ, अगर वो उखली में पड़ा हुआ चीज मेरे ऊपर ही बार बार क्यों वार करते हैं, मैं ही कितना सहन करूँ अगर वो चीज सोचता, चैतन्य होता तो शायद बोलता भी हा? तो वो चुपचाप सहन करता रहता है, तो वो चीज किस हम लोगों के लिए भोजन का वो एक अन्नपूर्णा देवी के रूप में हमारी सेवा में उपलब्ध रहती है। तो हम भी ऐसे मेहनत करके अपने ऊपर हर बात को सहन करते हुए समझदारी से चलते रहेंगे और बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनने का जो बाबा का भी हमारे लिए कितना संकल्प है, प्रयास है, कितनी सकाश दे रहे हैं इसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट शिक्षा के रूप में और दृष्टि के द्वारा, अभी तो दृष्टि के द्वारा ही पूरा अच्छी तरह हमको संपन्न संपूर्ण बनने का लक्ष्य लेना है। इसके लिए कुछ भी हो हम अपने पास जो शक्ति है परमात्मा और परमात्मा की दी हुई ज्ञान और उसके आधार से हमारे पास यथाशक्ति पवित्रता का जो उच्च कोटि की बातें हैं वो तो हम इतना नहीं कर सकते हैं, तो वो पवित्रता का जो बल है वो जो निधि अनमोल उसको किसी भी हालत में हिलने नहीं देना। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, त्यागना पड़े, कुछ भी सहना पड़े, मरण मिटना पड़े, ये लक्ष्य रखेंगे तो भी बाबा हमको बहुत आगे बढ़ाएंगे। और हम भी मना जैसे कहते हैं कि जैसे मीरा के लिए कहते हैं कितना भी घर पीना पड़ा उसको, और अपना दूसरा क्या कहते हैं कि सीता के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी सत्यवादी, हाँ प्रहलाद के लिए क्या प्रहलाद के लिए हाँ उसको भी सहन करना पड़ा। हाँ तो हम ऐसी कितनी भी परीक्षा है हमारे जीवन में भी तो हम पास होके ही, पास ही नहीं बल्कि पास दानव होके ही दिखाएंगे, क्योंकि जब उखली में सिर दे ही दिया है तो फिर डरना क्या है। क्योंकि एक मुरली में बाबा ने कहा कि किसी किसी सेंटर पर बहने बताती है कि बाबा ने कहा यहाँ पवित्र कोई आना है इंद्रप्रस्थ में, ऐसे वैसे को नहीं लेके आना, नहीं तो हमारे ऊपर भी बोझा चढ़ेगा, इसलिए हम नहीं आए, नहीं लेके जाएंगे आपको। तो बेचारा वो एक साल तक अगले साल तक पवित्रता की धारणा में लगा रहता है, क्योंकि इस साल कैंसिल हुआ तो अगले साल तक प्रयास करता रहता है, फिर सोचता है बीच बीच में आदत नहीं होने के कारण बेचारा बहुत नर्वस होता है कभी कभी, फिर वो सोचता है कि क्या फालतू में हम कहाँ फंस गए, फालतू में बीके बन गए, नहीं बनते तो शायद अच्छा होता। लेकिन एक मुरली बाबा ने कहा तुम्हारा पार्ट बीके बनने का ही था, तुम कहाँ जाते इस ड्रामा में, तुम्हारा बीके बनने का ही पार्ट है, इसलिए निश्चिंत हो के इस ड्रामा में जिसको जो पार्ट मिला है जैसा जितनी समझ है उसी अनुसार आगे बढ़ते रहे, सहनशक्ति को बढ़ाते रहे और इन परिस्थिति समस्या और विघ्न कितने भी प्रकार की समस्याएं आ जाए मतलब मुसल के रूप में आ जाए उसको हम डरे नहीं। ओम सर।